جزاك الله. الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ رہے ہیں. شروع کی 6 آیات جو ابھی تلاوت کی گئی ہیں، ان کے معارف المسائل، معارف القرآن، جلد نمبر 6 سے پڑھ رہے ہیں، نہیں 5 سے پڑھ رہے ہیں، سوری. تو اس میں جہاں تک ہم پہنچے تھے وہاں سے آگے چلتے ہیں. پیج نمبر 17 کے اوپر ہم نے پڑھنا ہے اب کہ نحنو نقصو، جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نحنو نقصو علیکا احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. ٹھیک ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر قصہ، بہترین قصہ، احسن القصص بما اوحینا، کہ تاکہ، یعنی اس واسطے کہ تاکہ ہم آپ کی طرف یہ قرآن جو ہے وہ وحی کریں. وان کنت، اور آپ تھے اس سے پہلے، لمن الغافلین، ضرور بالضرور بے خبر میں سے. غافلین سے مراد جو ہے یہاں پر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل تھے، ٹھیک ہے، یعنی نعوذ باللہ کوئی غلط کاموں کے اندر پڑے ہوئے تھے، بلکہ غافل سے مراد اس کی طرف سے آپ کو یعنی اس کا علم نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو بے خبر تھے. جیسے ایک انسان جب نیند میں چلا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی اس کو اردو زبان کے اندر غافلین کا غافل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اردو زبان کے تو اکثر الفاظ عربی سے ہی آئے ہیں، تو عربی میں اس کو غافلین فرمایا. تو یعنی ہم بیان کرتے ہیں آپ کے لیے بہترین قصہ، اس قرآن کو بہترین کو بذریعہ وحی آپ پر نازل کر کے، بے شک آپ اس سے پہلے ان تمام واقعات سے واقف نہ واقف تھے، ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دلوائی، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے سب سے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو بھی یہ ریمائنڈرز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو علم آپ کے پاس ہے نا، یہ علم آپ کے پاس ہمیشہ سے نہیں تھا، ٹھیک ہے. آپ پیدائشی عالم نہیں تھے، یہ آپ جو ہے وہ اپنے جد امجد سے آپ کو یہ علم نہیں ملا، یہ آپ کو ورثے میں علم نہیں ملا، ٹھیک ہے. جیسے کہ ایک بچہ ہوتا ہے، اس کو باپ سے جو ہے نا وہ بہت ساری کوالٹیز ملتی ہیں، تو وہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں بھائی، یہ تو میرے باپ دادا کی میراث ہے جو کہ مجھے ملی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کے باپ دادا سے آپ کو علم نہیں ملا تھا، ٹھیک ہے، نہ جو ہے وہ آپ کی کوئی ایسی عقلی صلاحیتیں تھیں کہ جن کی بنیاد پر آپ نے خود سے جو ہے نا وہ ساری دنیا کا مشاہدہ کیا، اور آپ نے جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھا، اور آپ نے یہاں سے پڑھا، اور آپ نے وہاں سے پڑھا، اور اپنی محنتوں کو استعمال کر کے آپ سب سے بڑے عالم بن گئے، انسانوں میں سب سے بڑے عالم بن گئے. نہیں، آپ غافل تھے، ٹھیک ہے، آپ کو ان سب چیزوں کا علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو علم دیا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو یہ بات بتا رہے ہیں، کیونکہ قرآن کے اول مخاطب جو ہیں وہ نبی علیہ السلام خود ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ اس لیے نہیں کہ نبی علیہ السلام سے کوئی احتمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو ہے نا وہ ایسا سمجھنا شروع ہو جائیں گے، غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. نبی علیہ السلام تو معصوم ہے نا، اور احسن یعنی بہترین اخلاق والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا احتمال ہی نہیں. تو پھر یہ ساری باتیں کیوں کی جاتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ امت کی تعلیم کے لیے، ہماری اور آپ کی تعلیم کے لیے. ہم امتی ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے. ہماری تعلیم کیا کہ بھائی تم بھی اپنے آپ کو جو ہے نا ایسے مت سمجھنا شروع ہو جانا کچھ علم ہاتھ آ گیا، کچھ کتابیں پڑھنی، کچھ جو ہے وہ ڈگری شگری مل گئی، ٹھیک ہے نا، کچھ جو ہے وہ علامہ والنامہ کا خطاب بھی مل گیا، مولوی صاحب کا خطاب مل گیا، شیخ صاحب کا خطاب مل گیا، ہے نا، اور آپ کو جو ہے وہ بہت ساری فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ آپ کو یاد ہو گئیں، سمجھ میں آ گئیں. یہ مت سمجھنا کہ تم کوئی پیدائشی طور پر ایسے تھے، ہے نا، اور نہ جو ہے وہ تمہیں کوئی باپ دادا کی، میرے ابا حضور جو ہیں وہ بہت بڑے عالم تھے، میرے دادا جو تھے نا وہ بہت بڑے خطیب تھے، اور میرے پردادا جو تھے وہ شیخ المشائخ تھے، تو اس وجہ سے یہ تو مجھے ملنا ہی تھا. آئی ڈیزروڈ اٹ، ہے نا، دس از پارٹ آف مائی فیملی لینیج. نو، ٹھیک ہے نا، آپ غافل تھے، آپ جب پیدا ہوئے تھے نا تو آپ کے پاس یہ سب علم نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جو بھی آپ کو پروسیس کے تھرو گزارا گیا ہے نا، تو وہ پروسیس بھی جو ہے وہ صرف اسباب کے درجے میں تھا، علم تو ہماری طرف سے آپ کو ملا ہے جو بھی ملا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کبھی بھی اس کو اپنا رائٹ مت سمجھنا، ہے نا. ابھی آپ سے شیئر بھی کیا ہے کچھ حق سمجھنے کے اوپر، کچھ بات بھی شیئر کری ہے تو وہ مثالی بیوی کے کانٹیکس میں، لیکن وہ ایسی یونیورسل ریالٹی ہے جو کہ ہر انسان کے اوپر اپلائی ہوتی ہے، کہ تمہیں جو چیز مل رہی ہے نا اس کو اپنا حق مت سمجھنا، ہے نا. یہ تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت مل رہی ہے وچ یو ڈڈ ناٹ ڈیزرو، یو ڈڈ ناٹ ڈیزرو دس، یو ڈڈ ناٹ پے فار اٹ، ہے نا. کوئی تم پیمنٹ کر کے نہیں آئے تھے عالم الارواح کے اندر کہ جنت میں کہ دنیا میں جاؤں گا تو مجھے جو ہے یہ نعمت ملنی چاہیے، میں اس کو پری پے کر کے جا رہا ہوں. پری پیڈ نعمتیں، رائٹ؟ نہیں، یہ کوئی بھی پری پیڈ نعمت نہیں ہے، سب کا سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور تم اگر اس کے اوپر شکر کرو گے تو میں اس نعمت کو بڑھاؤں گا، کفر کرو گے تو نعمت بھی چھین سکتا ہوں، اس دنیا کے اندر بھی چھین سکتا ہوں، اور دنیا میں اگر نہیں بھی چھینی بلکہ تمہاری ڈور جو ہے وہ میں نے ڈھیلی کر دی، رائٹ، تمہاری ڈور میں نے ڈھیلی کر دی، دنیا میں نعمت نہیں چھینی، تو آخرت میں یہ نعمتیں تم سے چھن جائیں گی، تمہیں واپس نہیں ملیں گی، اور تمہیں ان کے اوپر جہنم کا عذاب ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ ریالٹیز جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرواتے ہیں، کبھی ڈائریکٹلی بھی یاد کرواتے ہیں، کبھی بواسطہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی یاد کرواتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو علم کا تکبر اور علم کا زعم ہوتا ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یہ علم کا زعم کہ میرے پاس تو علم ہے، یہ جو عالم جب تکبر میں مبتلا ہو جائے نا علم والا، تو یہ سب سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، اس کے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. یہود کا تذکرہ ہے نا، یہ سورت جو ہے وہ یہود کے سوال کے اوپر نازل ہوئی تھی نا، تو یہود کا یہی مسئلہ تھا، یہود کا یہی مسئلہ تھا کہ وہ بہت بڑے عالم دین تھے، دین کا علم تھا، اور اس دین کے علم سے ان کے اندر جو ہے وہ تکبر آ گیا تھا، ہٹ دھرمی آ گئی تھی، ضد آ گئی تھی، ہے نا، اور ایسی ضد آ گئی تھی کہ نہیں مان کر کے دی انہوں نے، ہے نا. تو علم کا مقصد کیا ہے؟ اپنی اصلاح. علم کا مقصد کیا جس سے کہ علم فائدہ مند ہوتا ہے؟ اپنی اصلاح. اور جہاں یہ اپنی اصلاح جو ہے وہ نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے نا، اور علم جو ہے نا پھر وہ دوسروں کی اصلاح، رائٹ، مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے، تو اب میں دیکھوں کہ وہ یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا، دوسروں کی اصلاح مقصد بن گئی، تو وہاں پر جا کر کے یہ علم جو ہے وہ وبال بن جاتا ہے، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کل ہی ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کا جو ہے وہ جو نصیحتیں ایک بھائی ہمارے خطبات میں سے نکال نکال کے بھیجتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہی والی نصیحت بھی بھجوا دی، سبحان اللہ، ہے کہ علم جو ہے نا وہ وبال بن جاتا ہے اگر اس کے اوپر خود عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہمیں یاد دلائی جا رہی ہے انکا ان کنت من قبلہ لمن الغافلین، ہم نے آپ کو یہ چیزیں سمجھائیں، اس کے لیے علم دیا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ اس میں یہود کو تنبیہ ہے کہ تم نے جس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کرنا چاہی تھی، اس میں بھی رسول کا کمال واضح ہو گیا، کمال واضح ہو گیا، کیونکہ وہ پہلے سے امی اور تاریخ عالم سے ناواقف تھے، ٹھیک ہے نا. ناواقف ہونا تاریخ عالم سے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نبی علیہ السلام کی بطور شان کے بتا رہے ہیں. اب اس واقفیت کا کوئی ذریعہ بجز تعلیم الہی اور وحی نبوت کے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یعنی میرے نبی علیہ السلام کے پاس جو علم ہے نا, اس کی کامل نسبت, اس کا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے وہ میری ذات سے جا کر کے ملتا ہے. میں نے ان کو یہ علم عطا فرمایا ہے, جبکہ تمہارے پاس جو علم ہے, یہود کے پاس جو علم ہے نا, یہ تمہیں جو ہے وہ براہ راست اللہ کی طرف سے نہیں ملا, بلکہ تمہیں جو ہے وہ اللہ کی دوسرے انبیاء کے واسطے سے اور کتابوں کے واسطے سے اور جو ہے وہ اپنے باپ داداؤں کے واسطے سے ہے نا, اور اپنی جو ہے وہ تم نے محنتیں کری, تم نے اپنی عقل استعمال کری, ان واسطوں سے ملا. تو جو واسطوں کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے اور جو چیز بلا واسطہ ہوتی ہے, ان دونوں میں فرق ہوتا ہے, ان دونوں کی یعنی ایلیویشنز مختلف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ السلام کی جو ہے نا وہ واسطے سے, نسبت سے جو ہے وہ شان بیان کر رہے ہیں. دیکھو یہ نسبت جو ہے نا, جو کہ ان کو براہ راست مجھ سے حاصل ہے, یہ ان کی اصل شان ہے. ٹھیک ہے نا, اور تمہیں جو یہ علم کی ملی ہوئی ہے, یہ بھی میری طرف سے ملی ہے. یہ نہیں کہ تمہارا علم جو ہے وہ کوئی تم نے خود سے کریٹ کر لیا ہے, خود سے جو ہے وہ حاصل کر لیا, نہیں, علم تو تمہیں بھی میری طرف سے ملا ہے, لیکن اتنے سارے واسطے میرے اور تمہارے درمیان ہیں. ٹھیک ہے نا, تو کیا چیز ہمارے سامنے اصول کیا چیز آتی ہے کہ جس کے پاس جتنے واسطے بیچ میں آ جاتے ہیں نا, یعنی جتنے لیول, جتنے سٹیجز بیچ میں آ جاتی ہیں, اس سے جو ہے نا وہ عزت گھٹ جاتی ہے, اور جتنے کم واسطے ہوتے ہیں اس سے جو ہے وہ عزت بڑھتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر حدیث کی سند لینے کے لیے ماشاءاللہ ہمارے کچھ ساتھی بھی جو ہے وہ کافی ایکٹیو رہتے ہیں, ہے نا, کوئی کہیں جا کر کے حدیث کی سند لے رہا ہے, کوئی کہیں جا کر کے سند لے رہا ہے. تو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جو سند حدیث کی جو آپ لے رہے ہیں, تو اس میں آپ کے اور نبی علیہ السلام کے درمیان کتنے واسطے ہیں. جس کے واسطے سب سے کم ہوں گے اس کی سند جو ہے وہ عالی سند کہلائے گی, عالی, عزت والی, اونچی, ہے نا, اور جس کے زیادہ واسطے ہوں گے اس کی جو ہے وہ کم عالی کہلائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ واسطوں کا جو نظام ہے نا, یہ ہے تو یونیورسل نظام, لیکن آج کل دنیا کے اندر اس چیز کو شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے, تو ہمارے اصل فائدے کی چیزوں کو وہ ہماری نظروں سے غافل کر دیتا ہے, مطلب بھلا دیتا ہے. تو اس وجہ سے نا آج کل واسطے واسطے کی کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی, لیکن ہمارے دین کا نظام وہ واسطوں کے یعنی اس کے اندر واسطوں کی انتہائی شدید ترین اہمیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, خیر یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ سی بحث تھی, ہو سکتا ہے سب کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو, لیکن اکثر کو انشاءاللہ آ بھی گئی ہوگی. آگے فرماتے ہیں, اچھا ایک اور بات کہ یہ کہ پہلے امی تھے, تاریخ عالم سے ناواقف تھے, ہے نا, انسانی معاشرے کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ کم عزت والا سمجھا جاتا ہے نا, کہ یعنی ایک شخص جو ہے نا وہ امی تھا, امی ہونا کوئی ہمارے یعنی معاشرے کے اندر اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے, جاہل ہونا, پڑھنے لکھنے سے جو ہے وہ بالکل آری ہونا, ہے کچھ پڑھنے کے قابل نہ ہونا, یہ ہمارے معاشرے میں تو اچھا نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ ہمارے سٹینڈرڈ سے ضروری نہیں ہے سارے کے سارے میچ کریں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی شان کے طور پہ بیان کرتے ہیں, نبی الامی. ٹھیک ہے, جس چیز کو ہم جو ہے وہ اپنے لیے برا سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو بظاہر شان گھٹتی بھی نظر آ رہی ہے یہاں پر, ٹھیک ہے نا, ہمارے سٹینڈرڈز کے مطابق, لیکن اللہ تعالیٰ کے سٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے یہ اصل شان ہے. اور ہم میں سے بھی عقل مند وہی کہلائے گا جو کہ اللہ کے سٹینڈرڈز کو اپنے سٹینڈرڈز کے اوپر فوقیت دے. ٹھیک ہے, ہم اللہ کے سٹینڈرڈز کو ڈھونڈیں کہ اللہ کے کیا سٹینڈرڈز ہیں, اور پھر اس کو اپنے سٹینڈرڈز کے اوپر فوقیت دیں. آگے فرماتے ہیں, اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان, میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے, اور یہ دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. امید ہے آپ لوگ کچھ جوٹ ڈاؤن بھی کر رہے ہوں گے, کچھ پوائنٹس کو یا کچھ الفاظ کو, ٹھیک ہے, تاکہ کچھ ذہن کے اندر یہ چیزیں رہ بھی جائیں, ورنہ ہم تو بولتے چلے جائیں گے, آپ سنتے چلے جائیں گے, اور پھر کلاس ختم ہو گئی, رات گئی, بات گئی, کلاس گئی, اور ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ ذہن سے محو ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو کچھ لکھ لیں تو امید ہے کہ یہ علم جو ہے وہ ہمارے خلاف حجت نہیں بن جائے گا, اس لیے کہ ہمیں یاد رہے یا نہ رہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے جو کرامن کاتبین ہیں نا, ان کو تو یاد ہے کہ ہم کیا بیٹھ کر کے سن رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ان کو یہ ساری باتیں پتا چل چکی ہیں. ठीक है ना। और फिर जो है ना, अगर हमने उसके ऊपर अमल नहीं किया या हम उसके खिलाफ अमल कर रहे होंगे, तो फिर वो चीजें कयामत के दिन हमारे खिलाफ हुज्जत बन जाएंगी, ठीक है ना। तो बेहतर यही है कि भाई इन चीजों को हम याद करने का कुछ एहतमाम कर लें, ताकि ये हमारे खिलाफ हुज्जत बनने के बजाय हमारे हक में हुज्जत बन जाए कि देखो दीन का इल्म हासिल किया था, कुरान मजीद को समझने की मेहनत करी थी और उसको जिसने भुला नहीं दिया था, बिल्कुल जो है वो लास्ट प्रायोरिटी के ऊपर रख करके जो है ना, वो अपने जहन से फारिग नहीं कर दिया था। तो इस उम्मीद के साथ हम समझते हैं कि आप कुछ ना कुछ तो लिख रहे होंगे। आगे फरमाते हैं कि यह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब था कि जिसकी ताबीर के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि 11 सितारों से मुराद यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई और सूरज और चांद से मुराद माँ बाप थे, ठीक है, याकूब अलैहिस्सलाम उनकी बीवी। कुर्तुबी में है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा अगरचे उस वक्त से पहले वफात पा चुकी थी, हकीकी वालिदा वफात पा चुकी थी, मगर उनकी खाला वालिद माजिद के निकाह में आ गई थी। खाला खुद भी माँ के कायम मकाम समझी जाती है, खुसूसन जबकि वो वालिद की जौजियत में आ जाए तो उर्फन उसको माँ ही कहा जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप मॉम थी लेकिन खाला ही थी, तो खाला भी, खाला क्या है हदीस मुबारक के, कल कल माई कल नहीं माई सॉरी नहीं पानी की तरह नहीं, क्या है कल उम्मी जो हदीस है कि खाला जो होते हैं वो माँ की तरह होती है। और उसके अलावा भी इंसान जो है वो उसको एक्सपीरियंस करता है कि खाला के साथ उसका एक खसूसी ताल्लुक होता है। काला या तो यानी यहाँ पे चांदो सितारे से जो चांद से मुराद जो है ना वो खाला है नबी अलैहिस्सलाम, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की। अच्छा, काला या बुनैया ला तक्सुस रुया का अला इख्वतिका फयकीदू लका कैदा इन द शैतान लिल इंसानी अदुव मुबीन, यानी बेटा तुम अपना ये ख्वाब अपने भाइयों से ना कहना, ऐसा ना हो कि वो ये ख्वाब सुनकर तुम्हारी अजमत शान मालूम करके तुम्हें हलाक करने की कोई तदबीर करें, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, वो दुनिया के जाहो माल की खातिर इंसान को ऐसे कामों में मुब्तला कर देता है, ठीक है। तो तर्जुमे में और खुलासे तफसीर में हम इसके ऊपर काफी तफसील से बात कर चुके हैं कि एक तो ये कि याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद की तरबियत फरमा रहे हैं, ठीक है ना, तो मुआशरती तरबियत भी फरमा रहे हैं कि भाई भाइयों के साथ जो है ना वो तुम्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ठीक है ना। और एक बहुत ही अकल की यानी ये भी यानी हाउ टू डील विद पीपल, इस तरह की जो है वो एक इंटेलेक्चुअल बात भी बता रहे हैं कि भाई बेशक भाई जो है वो बहुत ही करीबी होते हैं। अच्छा, इनके अंदर सगा भाई भी मौजूद था 11 में से, ठीक है, बिन्यामीन, और बाकी 10 जो थे वो सगे नहीं थे लेकिन सौतेले तो थे, बाप तो एक ही था सबका, ठीक है। तो अगरचे कि ये बहुत करीबी रिश्ता है और इसका यानी बड़ा अहम रोल होता है एक इंसान की लाइफ के अंदर, हत्ता के भाई दुनिया में तो क्या आखिरत के अंदर भी जो है वो भाई भाई से मदद लेने के लिए जाएगा, तो वहां पर फिर मदद के लिए भाई जो है ना वो एक्सक्यूज कर लेगा, लेकिन भाई का जिक्र किया कयामत के दिन भी, ठीक है। तो इंसान अपने भाई की तरफ मदद के लिए जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर किस्म की बातें जो है ना वो तुम अपने भाइयों से भी शेयर करते फिरो, ठीक है। जुबान खोलने से पहले जो है ना वो सोच लेना चाहिए कि जुबान से क्या चीज निकल रही है और किसके सामने निकल रही है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हमने ये भी कि इसके अंदर फिर इन द शैतवाना है ना कि शैतान का भी तذکرہ कर दिया कि भाई से नफरत भी ना हो जाए भाइयों से कि ये तो दुश्मनी ही करेंगे, ये असल दुश्मन कोई थोड़ी है, असल दुश्मन तो शैतान है जो कि इनको वरगलाएगा, ठीक है ना। इसी वजह से जो है ना ये एक 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 जुमला है जो कि बहुत, चूंकि हमारे मुआशरे के अंदर इसको थ्रो अराउंड किया जाता है, तो अल्लाह ताला ने हमें भी इसका फिर एक जवाब अता कर दिया, ठीक है। बड़े अरसे से ये जवाब चल रहा है, वो ये कि जब बच्चे जो है ना वो कोई यानी बच्चों को जो है वो बुरे माहौल में भेज देते हैं, बच्चों को जो है वो बुराई के रास्ते के ऊपर डाल देते हैं, टीवी के सामने बिठा दिया, उनके हाथ में जो है वो टैब दे दिया, फोन दे दिया, उनको जो है वो गंदे लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ जो है वो उठने बैठने की इजाजत दे दी, ठीक है ना। और जब उनको समझाओ कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, तो आगे से जवाब क्या मिलता है कि हमें अपने बच्चे पे ट्रस्ट है, हमें अपने बच्चे के ऊपर ट्रस्ट है, हम अपने बच्चे के ऊपर एतमाद करते हैं, वो कुछ नहीं करेगा, है ना। यानी वो टीवी के ऊपर कोई गलत चीज नहीं देखेगा, वो कोई गलत बात सुनेगा नहीं, वो टैब के ऊपर कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, वो बुरे लड़कों के साथ तो रहेगा लेकिन खुद बुरा नहीं होगा, राइट। तो हमें अपने बच्चे के ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है। तो उसके आगे से फिर क्या बोले भाई ऐसे बंदे को, है ना, कि नहीं तुम्हारा बच्चा जो है वो तो शैतान की औलाद है, वो तो ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको फिर क्या समझाते हैं कि भाई बेशक बच्चों के ऊपर ट्रस्ट करो, लेकिन शैतान पे तो ट्रस्ट ना करो ना, शैतान पे तो ट्रस्ट ना करो ना, कि शैतान मेरे बच्चे को नहीं बहकाएगा, शैतान मेरे बच्चे को नहीं बहका सकता। शैतान ने तो जो है वो, यानी आदम अलैहिस्सलाम का वो बच्चा नहीं था, राइट, जिसको कि शैतान ने बहकाया और अपने भाई के कत्ल के ऊपर आमादा कर दिया, ठीक है ना। तो शैतान ने तो कहाँ कहाँ किस किस को नहीं बहकाया, तो ये हमारा एक बच्चा ही रह गया है जिसको कि शैतान नहीं बहका सकता, ठीक है। तो शैतान पे तो ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। अब मसला ये है कि शैतान ने हमें ये बावर करवा दिया है कि शैतान तो है ही नहीं, शैतान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, शैतान इज नॉट इवन अ रियालिटी, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो शायद हम समझते हैं कि, यानी शैतान की भी बात करें तो वो भी नहीं, शैतान मेरे बच्चों को नहीं बहका सकता, है ना। बाकी कोई को तो बहकाता है, सारी दुनिया को बहकाया हुआ है शैतान ने, सवाए मेरे और मेरे बच्चे के, हम दोनों को शैतान नहीं बहका सकता, ठीक है। तो अब ऐसे शख्स से तो फिर आप कोई बात नहीं कर सकते, उसको तो अल्लाह के हवाले करें, ठीक है ना। लेकिन जो कम अज कम बात सुनने के लिए तैयार है उसको तो ऐसे समझा सकते हैं ना कि भाई शैतान पे तो ट्रस्ट मत करो ना, ठीक है। तो भाई याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे भाई कोई, यानी एसेंशियली कोई वो खुद शैतान नहीं है, वो तो इंसान है जो कि खैर और शर का मजमुआ होता है, लेकिन शैतान तो शर ही शर का मजमुआ है ना, वो असल दुश्मन है, वो नहीं छोड़ेगा ऐसे मौके को, ठीक है, आपके खिलाफ इस्तेमाल करने से। और दूसरी चीज क्या कि इसके अंदर जो है वो रूहानी तरबियत भी है अपनी औलाद की, ठीक है ना। एक होती है मुआशरती तरबियत, एक होती है जिस्मानी तरबियत, एक होती है नफसियाती तरबियत, और एक होती है रूहानी तरबियत। रूहानी तरबियत ईमानी लेवल पर होती है, उन चीजों के बारे में बच्चों को बताना जो कि उनको फाइव सेंसेस से परसीवेबल नहीं है, है ना, जो कि सिर्फ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए इल्म की बुनियाद पर हमें पता है। उन चीजों को मानना ईमान कहलाता है, ठीक है। तो ईमानी तरबियत बच्चों की, शैतान का ताल्लुक ईमान के साथ है, शैताना में नजर नहीं आता। अच्छा, तो बहुत सारी इसमें बातें हमने पीछे करी थी, तो उनकी छोटी सी समरी होगी अभी। तो फरमाते हैं कि यानी बेटा तुम अपना ये ख्वाब अपने भाइयों से ना कहना, ऐसा ना हो कि वो ये ख्वाब सुनकर तुम्हारी अजमत शान मालूम करके तुम्हें हरा कर। अच्छा, ये पढ़ लिया हमने। इन आयात में चंद मसाइल काबिले जिक्र हैं। अब ये ख्वाब की हकीकत और दर्जा और उसकी किस्में मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने बयान फरमाई, तो वो हम यहाँ से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे अव्वल ख्वाब की हकीकत और इससे मालूम होने वाले वाकयात व अखबार का दर्जा और मकाम, ठीक है, यानी इनको किस जगह पे आपको प्लेस करना चाहिए, क्या बिल्कुल ही जो है वो रिजेक्ट कर देना चाहिए इनको, बिल्कुल यानी गैर हकीकी समझ के छोड़ देना चाहिए, या ख्वाबों को जो है वो अपने सर के ऊपर सवार कर लेना चाहिए, हर ख्वाब को जो है ना वो सर पे सवार किया हुआ है, ठीक है, कहाँ रखना चाहिए ख्वाब को। तफसीर मजहरी में हजरत काजी सनाउल्ला पानीपति रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हकीकत ख्वाब की यह है कि नफ्स इंसान जिस वक्त नींद या बेहोशी के सबब जाहिर बदन की तदबीर से फारिग हो जाता है, ठीक है। नफ्स इंसान से मुराद यहाँ पर इंसान का जो ओवरऑल वजूद होता है, यानी होलसम ह्यूमन बीइंग, ठीक है, यहाँ पे वो नफ्स मुराद नहीं है, नफ्स अम्मारा, नफ्स मुतमईना, नफ्स लवामा, जो कि हमारे अंदर की एक एक, एक सलाहियत को कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे बेसिकली हम, हमारा पूरा का पूरा वजूद जब नींद की हालत में जाता है ना, तो अब वो हमारे, यानी हाथ ने क्या करना है, पैर ने क्या करना है, ये सब नहीं सोच रहा होता है ना, इस तरफ से वो फारग हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से फिर उसको एक सुकून भी मिलता है कि भाई हर वक्त जो है वो आप मैनेजमेंट के अंदर लगे रहें कि मेरे पैर ने क्या करना था, हाथ ने क्या करना था, आंख ने क्या करना था, तो मुस्तकिल की मैनेजमेंट से जो है वो इंसान स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, नींद के अंदर जो है वो ये मैनेजमेंट खत्म हो जाती है, तो मैनेजर साहब जो है जब जाकर के घर में सोते हैं तो फिर उसके बाद उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाती है, तो उसको उसकी कुव्वत ख्यालिया की राह से कुछ सूरतें दिखाई देती हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमारी इमेजिनेशन पावर्स को उस वक्त जो है ना फिर, यानी ज्यादा एक्टिवेट कर दिया होता है, ठीक है। यानी जब आप हर वक्त जो है वो अपनी निगाहों से चीजों को देख रहे होते हैं ना, और कानों के ऊपर ही जो है वो आपने चीजों को यानी सुनने के ऊपर फोकस किया हुआ होता है, तो उस वक्त जो है ना वो इमेजिनेशन, तस्वुर, तस्वुराती जो कुवत होती है इंसान की, वो फुल कैपेसिटी पे फंक्शन नहीं कर रही होती है, ठीक है ना, बल्कि वो जो है वो यानी बेसिकली जो ऑब्जर्वेशन है और जो आपकी कान के जरिए से जो चीजें एंटर हो रही है ना, वो उनके तहत रहती है, सप्रेस्ड रहती है इमेजिनेशन की ताकत। ठीक है, तो नींद के हालत में जो है इमेजिनेशन जो है वो अनबाउंडेड हो जाती है। ठीक है, कुछ लोग जो है वो जागते हुए भी नींद की हालत में है, तो वो जागते हुए भी जो है वो इमेजिनेशन के अंदर ही रहते हैं, सामने क्या हो रहा है कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, वो बस अपने तखयलात के अंदर, ख्यालात के अंदर मगन है। ठीक है, तो वो तो एक फिर एक नेगेटिव सी सी बात होती है ना, भाई आप जागे हुए हैं तो अब आप सामने देखें क्या हो रहा है ना, सुने क्या क्या चीज बज रही है। तो ख्वाब की हालत में फिर वो इनसे फारिग हो जाता है। फिर इसकी तीन किस्में, जिनमें से दो बिल्कुल बातिल हैं, जिनकी कोई हकीकत और असलियत नहीं होती, और एक अपनी जात के एतबार से सही और साबित है। ठीक है, यानी इन ऑफ इट सेल्फ बिजाती ही तीसरी जो है ना वो सही और साबित होती है, मगर इस सही किस्म में भी कभी कुछ आवारिज शामिल होकर उसको फासिद व नाकाबिले एतबार कर देते हैं। ठीक है, तो अगर वो प्योर हो तो फिर तो वो सही और साधक होती है, लेकिन अवारिज यानी कुछ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ ऐसी चीजें जो होती है ना वो उसके अंदर शामिल हो जाती हैं, आरिजा। ठीक है ना, आरिजा का मतलब होता है कोई कोई बीमारी, कोई नुक्स। ठीक है, तो उसी की जमा जो है वो अवारिज है। सही है, तो ऐसी नुक्स वाली चीजें उसमें भी कभी मिक्सअप हो जाती हैं और उसको फिर खराब कर देती है। जैसे दूध जो है वो बेजात ही, दूध तो प्योरेस्ट ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, लेकिन दूध के अंदर जो है अगर नाउज बिल्ला कोई नजासत उसके अंदर गिर गई, उसके अंदर जो है वो कोई और चीज जो है वो पड़ गई, तो उससे फिर वो फासिद हो गया। ठीक है, नाकाबिले एतबार हो गया। अब जी पता नहीं इसके अंदर क्या क्या जहर पड़ा हुआ है, क्या इसके अंदर नुकसान वाली चीज दाखिल हो गई। तो ये मामला जो है ना ख्वाब की इस तीसरी किस्म का भी होता है। तफसील इसकी ये है कि ख्वाब में जो इंसान मुख्तलिफ सूरतें और वाकयात देखता है, कभी तो ऐसा होता है कि बेदारी की हालत में जो सूरतें इंसान देखता रहता है वही ख्वाब में मुतशक्कल होकर नजर आ जाती हैं। ठीक है, यानी अपनी एक शक्ल इख्तियार करके ख्वाब में नजर आ जाती हैं। ठीक है, जो दिन भर जो है वो दिमाग में जो खिचड़ी पकड़ी होती है ना, वो सोने के वक्त भी जो है वो पीछा नहीं छोड़ती। ठीक है, जब भी जो बहुत ज्यादा दुनिया से मोहब्बत और दुनिया की फिक्र करने वाले लोग होते हैं, तो वो सारा दिन जो है वो दफ्तर के अंदर। ठीक है, और जब रात को बिस्तर पे लेट के सोते हैं तो दफ्तर उनके अंदर। ये हमारे हजरत के अल्फाज हैं। ठीक है ना, वो क्या मतलब दफ्तर उनके अंदर का मतलब क्या कि उनके ख्वाब के अंदर भी जो है वो दफ्तर ही चल रहा होता है। ठीक है, सीधा दुकान वाला जो है वो सारा दिन दुकान के अंदर और रात को जो है वो दुकान उसके अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली वाली कसम। ठीक, और कभी ऐसा होता है कि शैतान कुछ सूरतें और वाकयात उसके जहन में डालता है। ठीक है, कभी खुश करने वाले और कभी डराने वाले। ये शैतान को अल्लाह ताला जो है ना वो इसके ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है, अब जब उसको परमिशन मिल जाती है इसके ख्यालात से खेलने की, इसकी कुव्वत ख्यालिया से खेलने की, तो वो जो है ना कभी इसको पंप अप करने के लिए, खुश करने के लिए बागात दिखाता है, और साथ साथ ये भी इंटरप्रिटेशन डालता है कि ये तो जन्नत के बागात हैं जिनकी तुम सैर कर रहे हो। ठीक है, और कभी जो है डराने वाले जो है वो बहुत ही इस किस्म की ऊटपटांग किस्म की चीजें दिखाता है। ये दोनों किस्में बातिल हैं। ठीक है, यानी पहली वाली भी बातिल है, वो भी कोई असल ख्वाब नहीं है, और दूसरी वाली भी बातिल है, वो भी कोई असल ख्वाब नहीं है, जिनकी ना कोई हकीकत और असलियत है, ना उसकी कोई वाकई ताबीर हो सकती है। ठीक है, असलियत ही कोई नहीं तो फिर ताबीर किस बात की करेंगे। इनमें पहली किस्म को हदीस उन नफ्स और दूसरी को तस्वीर शैतानी कहा जाता है। ठीक है, तस्वीर का जो लफ्ज है ना, बल सव्वलत रकुम, ये तस्वीर का लफ्ज भी सूरह यूसुफ के अंदर इस्तेमाल हुआ है, गालबन दो जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यानी बहलाना फुसलाना, तस्वीर शैतानी। तो यानी ये दो बेसिकली टर्म्स जो है वो मशायख ने इनके लिए कॉइन की हुई है, पहली किस्म के लिए और दूसरी किस्म के लिए। अच्छा, तीसरी किस्म जो सही और हक है, वो अल्लाह ताला की तरफ से एक किस्म का इल्हाम है, इंट्यूशन जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है, जो अपने बंदे को मुतनब्बे करने या खुशखबरी देने के लिए किया जाता है। ठीक है, तंबीह करने के लिए कि भाई ये ऐसा कुछ होने वाला है, होशियार हो जाओ। ठीक है, या ये कि तुम बड़े मायूस हो रहे हो, बड़े जो है वो डिप्रेस्ड हो रहे हो, नहीं कुछ अच्छा तुम्हारे साथ होने वाला है, तो खुश हो जाओ, उसको कहेंगे खुशखबरी देना। अल्लाह ताला अपने खजाने गैब से बाज़ चीजें उसके कल्ब व दिमाग में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम है अल्लाह ताला का कि भाई मुस्तकबिल को वैसे तो अल्लाह ताला ने हमसे छुपा करके रखा हुआ है, लेकिन उसकी खबर किसी को नहीं दी है, लेकिन मुस्तकबिल की कुछ कुछ जो है ना वो इंडिकेशंस वो मिल जाती हैं। जैसे कि बच्चा जो है वो बड़ा मायूस है कि वो मेरा तो पेपर अच्छा नहीं हुआ था, मैंने तो जो है ना वो मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा। और अब्बा जो थे ना वो जरा उनका टीचर से थोड़ा ताल्लुक था, तो टीचर से उनको पता चल गया कि नहीं, आपके बच्चे के जो है ना वो पेपर बड़ा अच्छा हुआ है और वो पास भी हो जाएगा, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। तो अब जो है वो रिजल्ट अनाउंस होने से पहले अब्बू जो है वो बच्चों को बताना तो नहीं चाहते कि आपका ये रिजल्ट आने वाला है, लेकिन कोई ऐसी बात कर देंगे कि जिससे इसकी मायूसी थोड़ी सी जो है ना वो कंट्रोल हो जाए, और ये इतना डिप्रेस होकर के कहीं ऐसा ना करे कि कोई खाना पीना ही छोड़ दे, कोई अपना नुकसान ना कर ले, ठीक है। तो उस तरीके से पहले से जो है वो कुछ मुस्तकबिल की बात हल्की फुल्की सी बता दी जाती है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन का ख्वाब एक कलाम है जिसमें वो अपने रब से शर्फ गुफ्तगू हासिल करता है। ये हदीस तिब्रानी ने बसनद सही रिवायत की है, तफसीर मज़हरी में इसको नकल किया है हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने। काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो सिलसिले नक्शबंदिया के एक बहुत ही सरखेल बुजुर्ग हजरत मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के खसूसी मुरीद थे, ठीक है। तो हजरत मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने रूहानी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा मुकाम अता फरमाया था, हत्ता के उनके जो हम असर हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उसी जमाने में वहीं पर दिल्ली के अंदर हुआ करते थे, तो वो फरमाते थे कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह से बढ़कर के ना कोई रूहानी दुनिया में मौजूद नहीं है, है ना। और शाह वलीउल्लाह का अपना दर्जा इतना सबसे मतलब बहुत ही बुलंद दर्जा था, ठीक है। तो अब इनके जो शागिर्द काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह, तो जाहिर अच्छा शागिर्द जो होता है वो तो अपने उस्ताद जो है वो अपने पीर से अपने उस्ताद से जो है वो कमालात हासिल करते हैं ना, तो उन्होंने फिर इस तरह की जो उलूम अपने शेख से हासिल किए वो अपनी इस तफसीर जिसको के जिसका नाम ही उन्होंने अपने शेख के नाम पे रखा, तफसीर मजहरी, ठीक है। तो उसके अंदर इस तरह की बहुत सारी बातें हजरत ने जमा की हुई हैं, तो इस वजह से ना ये तफसीर जो है ना इसकी एक स्पेशल क्वालिटी है कि ये रूहानियत की बातें इसके अंदर बड़ी कसरत के साथ मिलती हैं, और ये ख्वाब जो है इसका भी ताल्लुक है रूहानी दुनिया से है। तो फिर अच्छा, एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन का ख्वाब एक कलाम है जिसमें वो अपने रब से शर्फ गुफ्तगू हासिल करता है। इसकी तहकीक सूफिया कराम के बयान के मुताबिक ये है कि आलम में जितनी चीजें वजूद में आने वाली हैं उस वजूद से पहले हर चीज की एक खास शक्ल आलम मिसाल में होती है, ठीक है। और इस आलम मिसाल में जिस तरह जवाहिर और हकायक साबिता की सूरतें और शक्लें होती हैं, इसी तरह मानी और एराज की भी खास शक्लें होती हैं, ठीक है। बड़ा जरा लोडेड किस्म का ये जुमला है। तो क्या फरमा रहे हैं कि जो चीजें हमारे आलम के अंदर यानी जिस वर्ल्ड के अंदर हम रहते हैं ना, जो हमारी पैदाइश से लेकर के हमारी मौत तक, ये हर बंदे की एक वर्ल्ड होती है, आलम दुनिया उसको कहा जाता है उसके लिए, ठीक है। तो इस आलम दुनिया के अंदर तो अभी चीज नहीं हुई है, लेकिन अल्लाह ताला के इल्म में तो हर चीज हो चुकी है ना, ठीक है ना। यानी अल्लाह ताला के सामने तो एवरीथिंग इज फ्लैट, ठीक है ना। ये नहीं है कि जी एक तो एक 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 प्रोग्रेशन चल रही है, एक जो है वो तरतीब, अच्छा आगे जो चीजें हैं वो तो अभी हो ही नहीं है ना भाई, वो हमारे एतबार से नहीं हुई है फ्यूचर की चीजें, अल्लाह के एतबार से तो सारा का सारा फ्यूचर मौजूद है। इसी वजह से अल्लाह ताला फ्यूचर का तस्करा करते हैं अक्सर, तो पास्ट टेंस को इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर का तस्करा करते हैं, ठीक है ना। तो ग्रामेरियंस ने तो फरमाया कि भी पास्ट टेंस का इस्तेमाल जो है ना वो किसी चीज के सबूत को ज्यादा साबित करता है, इस वजह से पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के चीज इवेंट्स के लिए, है ना, क्यामत के इवेंट्स के लिए, इजा वकातिल वाकया, ठीक है वगैरह। लेकिन ये तो हमारे एतबार से है ना कि फ्यूचर की चीजें अभी तक नहीं हुई है, अल्लाह ताला के सामने तो माजी हाल मुस्तकबिल तीनों जमाने हो चुके हैं, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने इन सबको क्रिएट कर दिया और ये सब का सब जो है वो लौहे महफूज के अंदर अल्लाह ताला ने दर्ज करवा दिया, ठीक है। तो अब फ्यूचर की जो चीजें हमारे आलम के हिसाब से तो अभी वजूद में नहीं आई हैं, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ आलम मिसाल का जो आलम है वहां पर ना उन सबको अल्लाह ताला ने क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब उनकी जो है ना बाकायदा शक्लें क्रिएट करके रखी हुई है, ठीक ठीक है। तो वो शक्लों के बारे में बता रहे हैं कि हम जैसे समझते हैं कि जो जवाहर होते हैं, जवाहर का मतलब क्या, जौहर, जवाहर का लफ्ज जौहर से निकला, और जौहर जो है वो एटम को जौहर से ट्रांसलेट किया जाता है, एटम, ठीक है। सबसे छोटा जर्रा है ना, उसको अंग्रेजी में एटम कह देते हैं, मतलब तो खैर बहुत सारे आगे भी बहुत सारे जर्रा डिस्कवर हो गए उनके अपने अपने, लेकिन जो भी छोटा जर्रा है उसको एटम कहेंगे। आप न्यूक्लियस को भी एटम कह दें, आप इलेक्ट्रॉन को जो है वो एटम कहना शुरू कर दें, कहने में क्या है, लफ्ज अल्फाज से क्या होता है, कुछ नहीं होता, हकीकत की बात करें तो जो भी एटॉमिक चीजें हैं ना, यानी मटेरियल फिजिकल वर्ल्ड की जो चीजें हैं ना, तो और जो हकायक साबिता हैं, यानी जो चीजें यानी मटेरियली यानी एग्जिस्ट करती हैं, तो उनकी तो सूरतें शक्लें हम भी समझते हैं कि हाँ होती हैं, ठीक है ना। हमारे लिए भी समझना आसान है कि हाँ भी पहाड़ की जो है वो एक शक्ल है, दरख्त की एक शक्ल है, पानी की एक शक्ल है, ठीक है। लेकिन मानी और एराज की, यानी जो जो नॉन टेंजिबल और जो यानी जो मीनिंग के हिसाब से जो चीजें होती है ना, जिनकी एक बस मफहूम है, एक मीनिंग है, उनकी कोई फिजिकल शक्ल नहीं है, आलम मिसाल में उनकी भी फिजिकल शक्लें होती हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर गर्मी, अब ये गर्मी जो है ना, ये एक फीलिंग है कि जो कि हमें फील होती है कि भाई गर्मी की कोई शक्ल कोई थोड़ी होती, कोई कोई ना उजल जैसे, मतलब कोई गर्मी जो है वो के गेंडे को थोड़ी कहते हैं कि ये गर्मी है, राइट। कोई 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 जो है वो बत्तख, बत्तख ये गर्मी है, ये तो नहीं है ना, बत्तख की शक्ल तो नहीं होती गर्मी की। लेकिन आलम मिसाल के अंदर गर्मी को जो है ना, वो अल्लाह ताला ने जैसे आग की शक्ल दी हुई है ना, आग है तो गर्मी है। सर्दी को जो है वो बर्फ की शक्ल दी हुई है, हमारे यहाँ सर्दी जो है वो बर्फ को सर्दी को थोड़ी कहा जाता है, बर्फ को तो बर्फ कहा जाता है, सर्दी को तो नहीं कहा जाता ना, ठीक है। लेकिन आलम मिसाल के अंदर बर्फ की शक्ल सर्दी के लिए इस्तेमाल हुई है, ठीक है। तो ख्वाब में जब नफ्स इंसानी जाहिर बदन की तदबीर से फारिग होता है, ठीक है ना, अपनी जो है फिजिकल बॉडी मैनेजमेंट से फारिग हो जाता है ना, तो बाज औकात उसका ताल्लुक आलम मिसाल से हो जाता है, ठीक है। यानी और जगहों पर मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने ही लिखा है, मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर बात भी हो चुकी है काफी उस सबके ऊपर, कि हमारे रूह का एक हिस्सा, पूरी की पूरी रूह नहीं बल्कि रूह का एक हिस्सा जो है ना, वो हमारे बदन से निकल जाता है जब हम नींद की हालत में चले जाते हैं, और वो निकल के जो है ना, वो आलम मिसाल की तरफ ट्रैवल करता है, और बहुत तेजी के साथ ट्रैवल करता है। ये हमारे परसेप्शन में हम उस तेजी को नहीं लेकर के आ सकते जितना तेजी से वो ट्रैवल करता है। तो जब वो आलम मिसाल की तरफ ट्रैवल करता है ना, तो अब उसको चीजें नजर आनी शुरू हो जाती हैं, क्यों, वो क्योंकि वो उस आलम के अंदर सैर कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर ना जो कायनात की शक्लें हैं वो उसको नजर आ जाती हैं, फिर ये सूरतें आलम गैब से दिखाई जाती हैं। बाज औकात इनमें भी कुछ अवारिज ऐसे पैदा हो जाते हैं कि असली हकीकत के साथ कुछ तखयलात बातिला शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये ऊपर की तरफ यानी आलम मिसाल की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है, तो उसको चीजें नजर आ रही होती हैं, वो जाहिर है वो आलम गैब की चीजें, हमारी दुनिया के आलम की चीजें तो नहीं है ना। तो आलम मिसाल जो है वो आलम गैब का ही एक पोर्शन समझ लें। अच्छा, तो कुछ बातिल चीजें भी उसके अंदर शामिल हो जाती हैं कभी कभी, इसलिए अहले ताबीर को भी उसकी ताबीर समझना दुश्वार हो जाता है। एक मुकाम पर हजरत ने ये भी लिखा है, जाहिर है किसी बुजुर्ग को नकल करते हुए, कि जब रूह जो है वो उस डायरेक्शन में सफर कर रही होती है ना, आलम मिसाल की डायरेक्शन में, उस वक्त जो चीजें नजर आती हैं वो तो प्योर होती हैं, लेकिन अगर वो वहां से वापस लौट करके हमारे बदन की तरफ सफर कर रही होती है ना, यानी इस दुनिया की डायरेक्शन में सफर कर रही होती है जिस दुनिया के अंदर हमारा बदन मौजूद है, उस वक्त जो है ना वो उसके अंदर ये बातिल चीजें शामिल हो जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना, ये जब हमने ये बात करी थी वो कोविड-19 वाला जमाना था, ठीक है, उसके अंदर इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा बातें हो रही होती थी, तो उसमें गालबन ये बात आई थी उस डिस्कशन के अंदर कि अच्छी गहरी स्लीप जो है ना, वो इंसान के लिए इंतहाई जरूरी है, सुकून, ठीक है ना, क्योंकि जितनी गहरी स्लीप होगी ना, तो उसके अंदर जो है ना, वो आलम मिसाल की तरफ जो है वो उसके उसका सफर होगा, ठीक है। और अगर उसकी नींद जो है ना वो बार बार टूट रही है, तो टूट रही है का क्या मतलब है, टूट रहने का मतलब ये होता है बार बार नींद का टूटना, कि आपकी जो रूह जो कि अभी निकली थी आपके अंदर से, ऊपर जाने के लिए, आलम मिसाल की तरफ जाने के लिए उसको बार बार वापस आना पड़ रहा है जिस्म के अंदर, इसी को तो नींद का टूटना कहते हैं। तो वो बार बार जो वापस आ रही है ना, तो इससे जो है ना वो उसके अंदर फिर एक यानी यानी एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, एक एक उसके अंदर बहुत ही फिर यानी ये इम्प्योरिटीज जो होती है ना वो उसके अंदर शामिल होना शुरू हो जाती हैं, उसको सुकून नहीं मिलता। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि COVID-19 में इसको किस तरीके से टाई अप किया गया था, इस वक्त में ध्यान में नहीं है। बहरहाल, तो बाद अवकात उनमें कुछ ऐसे आवारिज भी पैदा हो जाते हैं कि असल हकीकत के साथ कुछ तखयलात बातिला शामिल हो जाते हैं, इसलिए अहल ताबीर को भी उसकी ताबीर समझना दुश्वार हो जाता है, और बाज अवकात वो तमाम आवारिज से पाक साफ रहती है तो वो असल हकीकत होती है। ठीक है, मगर उनमें भी बाज ख्वाब मोहताज ताबीर होते हैं। ठीक है, तो अहले ताबीर का मतलब क्या होता है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने ये इल्म दिया होता है कि ख्वाब की कैसी ताबीर है। ठीक है ना, ये एक इल्म लदुन्नी किस्म का इल्म है जो कि किताबों से हासिल नहीं किया जाता, पढ़ लिख करके उस्ताद के पास बैठ करके आप ख्वाब की ताबीर नहीं सीख रहे होते, बल्कि अल्लाह ताला ने यानी ये वही बात है कि अल्लाह ताला ने बस ये इल्हाम किया होता है, ये इल्हामी इल्म है। ठीक है, हर एक को यह हासिल नहीं होता, अलबत्ता जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इल्हामी इल्म के तौर पर ये इल्म दिया और उन्होंने फिर किताब के अंदर इसको लिख दिया कि इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था। ठीक है, तो अब उस किताब को पढ़ करके जो है ना, ऐसे लोग भी जिनको ये इल्म इल्हामी तौर पे नहीं मिला, उनको जो है वो इस इल्म का कुछ हिस्सा जो है वो किताबी तौर पे मिल गया। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की जैसे किताब उनको अल्लाह ताला ने इल्हामी तौर पे इल्म दिया था, तो उनकी किताब जो है वो मौजूद है, उसको देख करके फिर कुछ थोड़ी बहुत जो है वो इसके अंदर कोशिश की जा सकती है कि ख्वाब की ताबीर बताई जा सके। ठीक है, लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और बड़ा मुश्किल काम है ये। तो अहले ताबीर जो होते हैं, असल अहले ताबीर जिनको इल्हामी तौर पर यह इल्म मिलता है। अच्छा, तो जब जाहिर है कि यानी आलम मिसाल से कुछ चीजें तो देख ली, लेकिन डायरेक्शन जो थी वो टूवर्ड्स द दुनिया थी, तो बातिल ख्यालात भी उसके अंदर शामिल हो गए, तो भाई अहले ताबीर को भी जो है वो फिर बातिल ख्यालात को फिर यानी हटाना पड़ेगा ना ताबीर बताने से पहले, तो ये फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, दुश्वार हो जाता है उनके लिए भी। और जब प्योर चीजें होती हैं तो प्योर चीजों के अंदर भी जरूरी नहीं है कि इस दुनिया के जवाहिर और हकायक साबता सिर्फ नजर आए हों, बल्कि मानी और एराज भी जो है वो भी किसी ना किसी शक्ल में नजर आ रहे होते हैं, तो इस वजह से जो उनकी फिर ताबीर करनी पड़ती है कि भाई अच्छा बर्फ थी तो बर्फ जो है ना वो उसका क्या मतलब था। ठीक है ना, अच्छा खाली बर्फ का मतलब जो है वो ठंडक तो है, लेकिन क्या ये अच्छी ठंडक है कि बुरी ठंडक है। ठीक है ना, यानी एक होता है कि चाय ठंडी हो जाए, तो चाय ठंडी होना जो है तो ये बुरी ठंडक है ना। ठीक है ना, और एक होता है कि जी गर्मी के अंदर जो है वो ठंडा पानी हो जाए तो ये अच्छी ठंडक है, तो खाली ठंडक के होने से तो पता नहीं चलेगा ना कि बात अच्छी हो रही है कि बात बुरी हो रही है ना। आपको जो है वो इर्द गिर्द के उस वक्त के सिस्टम के भी मालूम करना होगा कि भाई ये ठंडक का जमाना था या ये गर्मी का जमाना था। गर्मी में ठंडक अच्छी चीज है, ठंडक में ठंडक अच्छी चीज नहीं है। ठीक है ना, तो ये इंटरप्रिटेशंस की जरूरत पड़ती है, इस वजह से इट्स अ कॉम्प्लेक्स नॉलेज। क्या लिखा आपने कि कभी कभार जागते में भी ऐसा महसूस होता है कि इस एहसास से पहले भी गुजरे हुए हैं हम, गुजरे हुए हैं हम, हालांकि वो आलम दुनिया में पहली बार महसूस हुआ होता है, आलम दुनिया में पहली बार महसूस हुआ होता है। क्या ये भी आलम मिसाल की तरफ इशारा होता है? हाँ, मतलब वैसे मैं तो इस फील्ड का बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ, वैसे भी किसी फील्ड का नहीं हूँ, लेकिन इस फील्ड का तो और भी नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत बात समझ में आती है वो ये कि जैसे ख्वाब में आप किसी ने ऐसी चीजें देखी होती है ना, तो आपको यानी सबके साथ इस तरह होता है कि कुछ ख्वाब तो आप फौरन भूल जाते हैं, कुछ ख्वाब जो है वो आपको थोड़े याद रहते हैं, थोड़े भूल जाते हैं, कुछ ख्वाब जो है ना वो सालों गुजरने के बाद भी इंसान के जहन में रहते हैं विविडली, जो है वो आपको सारी चीज याद रहती है जागने के बाद, और बाद में भी याद रहती है। ठीक है, तो अब वो चीज जो आपके जहन के अंदर यानी याद है आपको, अब दुनिया के अंदर आपने उस किस्म की कोई चीज देखी तो फिर आपको पुराना वो ख्वाब में देखी हुई बात जो है वो याद आ जाती है। ठीक है, तो वो ख्वाब में जो देखी थी वो तो आलम मिसाल ही की चीज देखी थी ना, वो दुनिया में तो नहीं, आपने स्लीप वॉकिंग तो नहीं कर रहे थे ना कि दुनिया की चीजें देख रहे थे सोते हुए, वो तो आलम मिसाल की चीजें थी। तो जागते हुए जो चीजें हैं वो तो फिर आलम दुनिया वाली चीजें हैं, तो फिर मैच कर जाती हैं, तो इस तरह से इंसान को। अच्छा, ये पैराग्राफ बस खत्म करके फिर आप की क्लास रोकते हैं कि बाज अवकात तो तमाम आवारे से पाक साफ रहती हैं तो असल हकीकत होती हैं, मगर उनमें भी बाज ख्वाब मोहताज ताबीर होते हैं क्योंकि इनमें हकीकत वाकया वाज नहीं होती है,
ऐसी सूरत में भी अगर ताबीर गलत हो जाए तो वाकया मुख्तलिफ हो जाता है। इसलिए सिर्फ वो ख्वाब सही तौर पर इल्हाम मिन अल्लाह और हकीकत साबित होगी जो अल्लाह की तरफ से हो और इसमें कुछ अवारिस भी शामिल ना हुए हों और ताबीर भी सही दी गई हो। ठीक है ना, यानी अल्लाह की तरफ से हो का मतलब ये कि दरमियान में अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना वो शैतान को इजाजत ना मिली हो, बल्कि अल्लाह ताला ने इस मामले को अपने हाथ में रखा हुआ हो। ठीक है, तो वही डायरेक्ट निस्बत अल्लाह की तरफ से हो इस ख्वाब की। ठीक है, और अवारिस भी शामिल ना हुए हो। ठीक है ना, तो ऐसा भी नहीं हो कि यानी आलम मिसाल में जो चीजें देखी वो तो थी लेकिन फिर रिटर्न जर्नी के अंदर जो है ना फिर वो अवारिस के अंदर शामिल हो गए, ऐसा भी ना हुआ हो और फिर ताबीर भी सही दी गई हो। ये भी जो है ना वो मशायख समझाते हैं कि ख्वाब की ताबीर भी जो है ना वो आपने अगर किसी से करवा ली ना और वो जो है वो गैर मुहतात किस्म का इंसान था तो उसने अगर गलत ताबीर दे दी ना, ठीक है, तो वही ताबीर जो है ना फिर उस ख्वाब की बन भी जाती है। ठीक है, यानी ये बहुत ही सेंसिटिव किस्म का मामला है। ठीक है, तो इसी वजह से ख्वाब जो है ना वो बताने से जो है वो मना किया गया, सिवाय ऐसे शख्स को कि जिसके पास इल्म हो, ठीक है ना, और जो कि आपके साथ मुखलिस हो, खैर ख्वाह हो। ठीक है, तो अदर और मोहताज भी हो, यानी तकवा वाला भी हो, कुछ एहतियात, यानी अपनी तरफ से ऐसी उल्टी सीधी चीजें बयान करना कि ये समझेंगे कि शेख साहब को तो ख्वाब की ताबीर ही नहीं आती है ना, तो ये किस किस्म के शेख साहब हैं, तो चलो जी शेख साहब ने जो है ना वो अपनी तरफ से ताबीर बना के बता दी। ठीक है ना, ताकि उनकी इज्जत रह जाए, ऐसे वाले शेख साहब तो फिर मुश्किल हो जाती है उनके साथ। ठीक है, तो शेख साहब भी ऐसे होने चाहिए जो कि नहीं आती तो बता दें भाई कि नहीं आती मुझे। ठीक है ना, अलबत्ता जो है वो मैंने कहीं से सुना ये था और कहीं से जो है वो मैंने पढ़ा था या मेरे हजरत ने इस तरह से बयान किया था, तो इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन मुझे इस ख्वाब की ताबीर नहीं आती है। ठीक है, तो बस ऐसे ही किसी शख्स से बयान करना चाहिए वरना नहीं बयान करना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह ताला बात की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।